आगे देखते हैं मजलूम की दुआ। शायर कहता है कि बहुत से रातों को चलने वाले किसी जगह की तलाश में नहीं चले, और ना उन्होंने सहराई मैदानों को कता किया यानी पार किया, वो वहां चले जहां सवारियां दौड़ाई नहीं जाती, घाट पर पहुंचकर रुका नहीं जाता, रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती, रात पूरी तरह छाई हुई है, सोने वाले और बातें करने वाले सभी लेटे हुए हैं, तब वो चलते चले जाते हैं। इब्राहिम बिन तैमी, यानी दो नाम लिख लीजिए, इब्राहिम अल तैमी कहते हैं, जो आदमी मुझ पर जुल्म करता है मैं इस पर रहम करता हूँ। खरासान के एक मर्द साले के दीनार चोरी हो गए, वो रोने लगा। फुजैल बोले, अरे भाई क्यों रोते हो? कहने लगे, जिसने दीनार चुराए हैं क्यामत में अल्लाह इसे मेरे साथ इकट्ठा करेगा, मुझे इस पर रहम आया इसलिए रोने लगा। यानी अपने दिनार चोरी होने पे नहीं रो रहे, चोर के बुरे इंजाम पे रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ऐसा दिल बना दे हमारा भी। एक शख्स ने उलमाए सलफ में से किसी की गीबत की तो उन्होंने इसे हदियतन यानी तोहफे में खजूर भेजे, कहा इसने मेरे साथ नेकी की है इसलिए ये हदिया दे रहा हूं। अल्लाह ताला जर्फ को बुलंद कर दे। तो क्या सीखा हमने? कि मजलूम की बददुआ से बचना। जामे तिर्मिजी की रिवायत है 3448, आपने फरमाया तीन तरह की दुआएं कबूल होती हैं, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और बाप की अपने बेटे के हक में। अमूमन माओं की दुआएं मशहूर हैं, तो माएं तो बहुत दुआएं देती हैं ना, बाप कम देते हैं, तो बाप की भी दुआएं लीजिए। पाक में इक़वामे मुत्तहिदा के दफ्तर में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें आलमी शायर सादी शेराजी का एक खूबसूरत कता लिखा हुआ है जिसका इंग्लिश में भी तर्जमा किया गया है। ये मिस्रे अखुवत भाईचारे के दरमियान फर्क किया। एक साल गुजरा, फिर मैं आया और आजी से दरवाजा खटखटाया, कहने लगा तुम कौन हो? मैंने कहा देख लो, यहां भी तुम हो, वहां दरवाजे पर भी तुम हो, जहां देखता हूं वहां तुम ही तुम हो। कहने के बंदे के लिए जरूरी है कि इसका एक दोस्त हो जिससे इसे उनसीयत हो, इसकी शादी और गमी में शरीक रहे, इससे मोहब्बत करे। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, वजली वजीर मिन अहली, कि मेरे घर वालों में मेरा एक साथी बना दीजिए, वो मेरा भाई हारून ही हो, और इससे मेरी कमर पुख्ता कर दे, इसे मेरे मामले में शरीक कर दे ताकि हम तेरी खूब खूब हमदो सना और जिक्र करें। शायर कहते हैं कि जरूरी है कि कोई कराबत वाला हो जो तेरा गम गुसार हो, तुझे तसल्ली दे, तेरे दर्द पर इसे भी दर्द हो। इंसान की कमजोरी है कि उसको कोई हम दर्द चाहिए होता है। और अल्लाह ताला भी तो कहते हैं ना मोमिनों की खूबी, वो एक दूसरे के मददगार और दोस्त हैं। सूरह तौबा में है, और सूरह सफ में क्या आता है, कान्नहुम बुनयानुम मरसूस, गोया कि वो एक सीसा पिलाई दीवार है। और अल्लाह ताला सूरह तौबा में भी ये कहते हैं कि अल्लफ बैना कुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाली, वलो अनफक्त मा फिल अर्दी जमीया, अगर तू दुनिया का सब कुछ जमा किया हुआ खर्च करता तो मा अल्लफ बैना कुलूबिहिम, उनके दिलों में मोहब्बत ना पाता। यानी अल्लाह दिलों में उल्फत डाल देता है। और वैसे भी कहा गया कि ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं, इन्नमल मुस्लिमूना इख्वा, सूरह हुजरात में आता है। तो क्या पता चला, तेरे दर पे खड़ा हूं। मुराद क्या है? अल्लाह की दोस्ती, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का कुर्ब। खानदान और दोस्तों में कम से कम एक गम ख्वार जरूरी होता है। अल्लाह के नबी के लिए हजरत खदीजा थी, घर की जिंदगी में और बाहर के मसाइल के मुकाबले में अबू तालिब बहुत बड़ी ढाल थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम थे। हजरत इब्ने अब्बास ने अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या आप अबू तालिब को कुछ नफा पहुंचा सकेंगे? वो हर तरफ से आपका दिफा करते थे और आपकी खातिर गजबनाक होते थे। सही मुस्लिम की रिवायत है 510। और इसी तरह अल्लाह के नबी जब गारे हिरा से लौटे तो खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास आए, आपका दिल धड़क रहा था और खदीजा आपको वरका बिन नौफल के पास ले गई। सही बुखारी 3392 में तफसीली वाक्या। तो क्या पता चला कि इंसान को कोई गमगुसार चाहिए होता है जो अल्लाह तला के साथ दिल लगा लेते हैं ना, फिर अल्लाह उनको अच्छे साथी भी दे देता है। फिर आगे देखिए, दोस्त जरूरी है। खुश नसीबी के असबाब में ये भी है कि तुम्हें फायदा मंद और गम गुसार दोस्त मिले। हदीस में आया कि अल्लाह ताला फरमाएगा, कहाँ है मेरे लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, ऐनल मुतहाबी नफिया, आज मैं इन्हें अपने साए में जगह दूंगा जबकि मेरे साए के अलावा कोई साया नहीं। दो ऐसे दोस्त जिनकी मोहब्बत, जिनका मेल जोल और जुदाई सब अल्लाह के लिए हो। जरा सा सोचिए कि आपकी दोस्ती किससे है। तो दोस्त सबको चाहिए होते हैं, और अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले दोस्त कैसे होते हैं? पहली बात है कि दुनियावी गमों में साथ देने वाले होते हैं, फिर इसी तरह तवासी भी सब्र करते हैं। कैसे? कि जब अल्लाह की राह में कोई मुश्किलें आती हैं तो ढारस बंधाते हैं, ये नहीं कहते सब छोड़ दो, बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर सकते। फिर इसी तरह क्यामत के रोज ये अल्लाह तआला के अर्श के साए में होंगे। और इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत 6710, जन्नत में एक साथ इंसान इसके साथ जिससे मोहब्बत होगी, यानी जन्नत में दोनों एक साथ होंगे। और वो रिवायत आपने बहुत दफा सुनी होगी जो सही मुस्लिम 6549 में है, कि एक शख्स दूर से अपने किसी भाई को मिलने गया, किसी और बस्ती में वो रहता था। अल्लाह ताला ने रास्ते में एक फरिश्ते को निगरानी के लिए मुकर्रर कर दिया। जब वो शख्स इस फरिश्ते के पास आया तो फरिश्ते ने पूछा, कहाँ जाना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं अपने भाई के पास जाना चाहता हूँ जिस बस्ती में। भाई से मेरा दोस्त ही था। इसने पूछा, क्या तुम्हारा इस पर कोई एहसान है जिसे मुकम्मल करना चाहते हो? कहा, नहीं, बस मुझे इससे सिर्फ अल्लाह की खातिर मोहब्बत है। उसने कहा, तो मैं अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास भेजा जाने वाला कासिद हूं कि अल्लाह ताला को भी तुम्हारे साथ इसी तरह मोहब्बत है जिस तरह इसकी खातिर तुमने इस भाई से मोहब्बत की है। तो दीन के नाम पे जो मोहब्बतें, ये बड़ी प्योर होती हैं, इसमें गिले शिकवे नहीं होते, इसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो अभी जितनी पीछे चंद चीजें हमने सीखी उनका खुलासा लीजिए। क्या सीखा? अल्लाह को अच्छे और मसनून कलेमात से पुकारना चाहिए, अल्लाह की पकड़ सख्त है, जुल्म से बचना है, मजलूम हो तो दुआ करें, कम अज कम एक गम गुसार दोस्त चाहिए, अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करनी है, और अल्लाह ताला हमें इस मोहब्बत की तौफीक दे। अगला टॉपिक देखिएगा, अमन शरण और अकलन मतलूब है, यानी शरीयत का भी यही तकाजा है और हमारी अकल का भी यही तकाजा है कि दुनिया में अमन हो। और वो अमन कहाँ से? वो ईमान से है। तभी तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, यही वो लोग हैं जिन्हें अमन मिलेगा, वो ही राहयाब हैं। वो जिसने इनको भूख के वक्त खिलाया और खौफ से मामून किया, कहाँ लिखा ये? ली इलाफी कुरैश इलाफी हिम रिखलत शिताई वसईफ। क्या हमने इनको महफूज व मामून हरम नहीं दे रखा? सूरह कसस है गालिबन 57। इसी तरह वो जो शख्स इस हरम में दाखिल होगा मामून होगा, सूरह आल इमरान 97 चौथे पारे के बिल्कुल शुरू में, वमन दखलहू कान आमिनन। टेंशन फ्री जोन है मक्का हरम। फिर इसे इसके महफूज ठिकाने पर पहुंचा दे, मना हुआ था सूरह तौबा की आयत नंबर 6 है, कि इसे मारफत हक पर यकीन व इत्मीनान हासिल हो और यकीन से पुर हो। घर की सलामती यह है कि वो इन्हराफ से महफूज, रजाइल से दूर, सकीनत से भरा और रब्बानी हिदायत से फैज याफ्ता हो। उम्मत का अमन यह है कि लोग बाहम मोहब्बत और उल्फत के साथ रहें, मामलात में अदल हो और शरीयत के जरिए इसकी देखभाल हो। बेखौफ का मतलब यह है कि दुश्मन की तरफ से अमन चैन से होना, यानी दुश्मन के हमले का खतरा नहीं, बस वो वहां से खौफ और अंदेशे की हालत में निकले। कौन? मूसा। इनसे खौफ न खाओ, मुझसे डरो अगर तुम साहिब ईमान हो, सहाबा को अल्लाह ने कहा गया हमर उल असद के मौके पे। डरने वाले को राहत नहीं मिलती, मुलहित को अमन, और कोई बीमार दादो ऐश नहीं देता। उम्र क्या है? सेहत बकदरे किफाफ रोजी, यानी जो किफायत करे, ये दोनों ना रहें तो समझो कि उम्र चली गई। यानी रोजी से भी बंदा महरूम हो जाए, बिल्कुल इतनी भी ना हो कि खा ना सके, और सेहत खराब हो जाए तो समझो वो बंदा फिर जिंदगी से हाथ धो गया। बखुदा दुनिया कैसी है, एक जानिब से सही है तो दूसरी जानिब से फासिद। माल आता है तो जिस्म में बीमारी लाहक होती, सेहत मिली और मुसीबतें टूट पड़ी, मामला ठीक ठाक हुए तो मौत आ गई। शायर आशा नजद से निकला, बड़ा मारूफ शायर था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह करने के लिए और इस्लाम ले आए। रास्ते में अबू सुफियान मिल गए और पेशकश की कि वो सफर छोड़ दे और घर वापस चला जाए तो सौंठ मिलेंगे। इसने सौंठ ले ली और लौट गया। एक ऊंट पर सवार हुआ जो इसे ले कर गिर गया। सर के बल गिरने से गर्दन टूट गई और बेदीनो दुनिया जिंदगी से चला गया। हाँ, जो कसीदा इसने रसूल अकरम को सुनाने के लिए तैयार किया था वो बहुत उम्दा था। इसमें वो कहता है, जवानी बुढ़ापा गुर्बत और सरबत मंदी, बस जमाना इसी तरह चलता रहता है। अगर तुम तकवा का ज्यादे राह ना रखोगे और मौत के बाद ऐसे लोगों से मिलोगे जो ज्यादे राह लेकर गए हैं, तो तुम्हें इसके जैसा न होने पर और इस पर के जो वो देख रहा था तुमने नहीं देखा नदामत होगी। मुराद ये कि दुनिया का थोड़ा सा फायदा लेकर आखिरत की भी और दुनिया की भी असल कामयाबी को छोड़ दिया तो क्या देखा कि अमन मतलूब है। क्या होता है अमन? पहली बात है कि सुकून और चैन, आपके अंदर भी सुकून हो बाहर भी, आश्ती और फलाह हो, पुरसुकून हो आप, सुलह जोई और मुतमईन होना। किसी ने कहा कि करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पर। यानी हम दुनिया में लोगों के साथ जो करते हैं फिर अमूमन वही अल्लाह हमारे साथ भी करता है। इस्लाम लाजवाल सलामती का मजहब है। इस्लाम में अमन का इतना वाज़ेह तसव्वुर मौजूद है कि सारे दीन यानी दीगर अदियान आलम, सारी दुनिया के रिलीजन इनकी नज़ीर पेश करने से कासिर हैं। इसका नाम ही इस्लाम रखा गया यानी दायमी अमनो सुकून। और सूरत मायदा आयत 32 में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, मन कतल नफ्सन बगैरी नफ्सन औ फसाद इन फिल अर्दी फकअन्नमा कतल अन्नास जमीया वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयान्नास जमीया। तो एक की जान बचाना सब की जान बचाना है। रजाइल से पाक हो इंसान, कनात और सादगी वाली जिंदगी हो। माशरे का अमन कैसे है? अदल और इंसाफ, रोजगार का आसान हसूल यानी कि लोग रिस्के हलाल के लिए भी तरसते रहे। माशरे के पायदार अमन के लिए इस्लाम का निफाज लाजिम है। देखिए, पहले दिल में अमन था, वहां से निकला तो पूरे घर में आ गया। एक घर में था तो माशरे के हर घर में चला गया, और जब माशरे में अमन है तो दुनिया का अमन। ये है वर्ल्ड पीस स्ट्रेटेजी। माशरे के बाद जब दुनिया के अमन की बात करते हैं तो वहां रहम होगा, खैर ख्वाही होगी, अमन पसंदी होगी, ताकत और दौलत की मुनसिफाना तकसीम होगी, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून फिर नहीं चलता। अगली टिप लीजिए, दुनियावी बड़ाई जायल होकर रहेगी, क्योंकि दुनिया भी तो जायल होगी ना। जितनी भी इज्जत किसी को मिल गई आखिर तो जाएगी ना। हकीकी खुशी वो है जो कामिल और दायमी हो। दमाम का मतलब है कि दुनिया में भी मिले आखिरत में भी, कल भी आज भी। और तकमील यह है कि कोई बुराई से मुकद्दर ना करे यानी गदला ना करे, इसके रुए जमील पर छींटे ना पड़े। शाह इराक नोमान बिन मुंजर एक दरख्त के नीचे बैठा रंग रलियां मना रहा था। अदी बिन जैद हकीमुल अरब ने इसे नसीहत करते हुए कहा, बादशाह आप जानते हैं कि यह दरख्त क्या कह रहा है? बादशाह ने पूछा, क्या कह रहा है? अदी ने ये शेर पढ़े जिसका खुलासा क्या है, हमारे अतराफ में बहुत से काफिलों ने डेरे डाले और शराबे अरगवानी के जाम लुढ़ाए, फिर जमाने ने इनके साथ खिलवाड़ किया, और जमाने में इसके सिवा क्या रखा है? दुनिया है सुख से खाली, दुख चार सू भरा है, गम के सिवा यहां पर सोचो तो क्या धरा है। ये सुनकर नोमान मकदर हो गया यानी उसके दिल ने इस बात को कबूल किया। इसने शराब छोड़ दी और मौत तक ऐसे ही अफसरदा रहा, यानी उसको फायदा हो गया इसे। शाह ईरान फारसी ममलिकत के क्याम पर 2500 यानी 2500 बरस गुजारने का जश्न बड़े तुस्को एहतशाम से बना रहा था और ममलिकत की तौसी के मंसूबे बना रहा था कि अचानक लम्हों लम्हों में इसके ख्वाब मुंतशिर हो गए। इक्तदार छिन गया, इसे जिला वतन कर दिया गया। अल्लाह तो खुद कहते हैं, वतनजुल मुल्क मिम मंतशा व तो इज्जो मंतशा, तो जिसे चाहे बादशाहत दे जिसे चाहे छीन ले। ये शख्स अपने महल्लात कोठियों और ऐशो मस्ती की ख्वाबगाहों से निकाल दिया गया, वतन से दूर मुफलिस और मुजरिम होकर मरा कि कोई भी इस पर रोने वाला न था। और अल्लाह ने कौमे फिरौन के लिए ये बात कही कुराने पाक में, उन्होंने कितने ही बागात और चश्मे, सरसब्जों खेत और अच्छे मुकामात और वो नेमते जिनमें वो नाजों से रहते थे सब छोड़ दिए, यानी खुद तो डूब गए और उनके महल पीछे खाली पड़े रहे। यही हशर रोमानिया के सदर चार विस्की का हुआ, जिसने 22 साल 22 ईयर तुम तराक से हुकूमत की, यानी बड़ी शाही हुकूमत थी, बहुत रोब था। इसके अपने मुहाफ़िज़ों की रिजर्व फोर्स की तादाद 70,000 थी। फिर क्या हुआ? अवाम ने इसके महल का मुहासरा कर लिया और इसके मुहाफ़िज़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। किधर के वो 70,000 मुहाफ़िज़ सिक्योरिटी गार्ड्स, अक्सर तो आप देखते हैं अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों मरवा दिए जाते हैं। और अल्लाह ने सच कहा कि इसका कोई मददगार ना था जो अल्लाह से इसे बचा ले, ना ही वो खुद को बचाने वालों में से हो सका। वो दुनिया और आखिरत दोनों से गया। इसी तरह फिलिपाइन के सदर मार्कूस का किस्सा है। उसके पास मुल्क की सदारत, मुल्को दौलत सभी कुछ था, लेकिन इसने अपनी कौम को खूब जलील किया और सख्त अजियत पहुंचाई। अल्लाह ने भी ऐसी सजा दी कि अपने मुल्क से भगा दिया गया। घर वालों ने साथ छोड़ दिया, इसकी कोई पनाहगाह न थी, इसी बदबख्ती के आलम में मर गया। इसकी कौम ने दफन करने के लिए इसे 2 गज जमीन भी देने से इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुए खात्मा से सबको बचाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या हमने इसकी चाल अकारत न कर दी? अल्लाह ने इसे दुनिया आखरत में शदीद अजाब दिया। हर एक को इसके गुनाह की वजह से हमने पकड़ लिया, तो गुनाहों पे अल्लाह की पकड़ आती है। तो दुनिया में किसी के बारे में भी कोई गलत बात कहते हुए बंदा 10 दफा सोचे तो क्या पता चला कि दुनियावी बड़ाई आखिर जायल होकर रहेगी। सब माया है। कैसे? जवानी के बाद बुढ़ापा, आसानी के बाद मुश्किल, खुशी के बाद गम, शोहरत के बाद बेनामी। बच्चे से बंदा चलता है और बुढ़ापे में फिर स्टेक हाथ में आ जाती है। और ये आयात कितनी हसीन है जो हमने पढ़ी सूरह दुहान 25:7 में। क्या कहा? कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नामतिन कानू फीहा फाकिहीन। दिल बड़ा उदास होता है वैसे भी जब कभी नायतों पे पहुंचे। वो लोग बहुत से बाग और चश्मे छोड़ गए और खेतियां और नफीस मकान और आराम की चीजें जिनमें ऐश किया करते थे, तो क्या मिला? इसीलिए शायर ने कहा, क्यों हर अरूज को यहाँ आखिर जवाल है, सोचें अगर तो सिर्फ यही एक सवाल है। लम्हा यही जो इस घड़ी आलम पे है मुहित, होने की इस जहां में तन्हा मिसाल है। तो बात यही है कि इस दुनिया में किसी को बका नहीं। आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे आज की नशिस्त का, फजाइल का इक्तसाब, खुशहाल जिंदगी की मेराज। जो बंदा सादत, अमन और राहत चाहता हो, इसे चाहिए कि फजाइल के हसूल, सिफाते हमीदा और अच्छे अमाल के हसूल की कोशिश करे, अपने लिए नफा बख्श चीज की हिरस करे और अल्लाह से मदद चाहे। एक सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की रिफाकत चाहते हैं, तो आप फरमाते हैं, इसके लिए मेरी मदद यूं करो कि ज्यादा से ज्यादा नमाजें पढ़ो, जितने भी सजदे करोगे इसके बदले अल्लाह ताला तुम्हें एक दर्जा बुलंद कर देगा। एक दूसरे सहाबी खैर के एक जामे बाप की दरख्वास्त करते हैं, इससे फरमाते हैं, तुम्हारी जुबान मुस्तकिल अल्लाह के जिक्र से तर रहे। एक तीसरे सहाबी भी ऐसी ही फरमाइश करते हैं, तो आप फरमाते हैं, तुम किसी को गाली ना देना, अपने हाथ से किसी को ना मारना। अगर कोई तुम्हारी किसी खामी पर तुम्हें बुरा भला कहे तो तुम इसकी खामी पर बुरा भला ना कहना, भलाई थोड़ी सी भी हो इसकी तहकीर ना करना, अगरचे तुम अपने डोल से पीने वाले के बर्तन में डाल दो। अहम मामला जल्दी और इकदाम चाहता है, फितनों से पहले अमल करने के लिए जल्दी करो। 5 को 5 से पहले गनीमत जानो, यानी इख्तनिम खम्सन कबला खम्स, अपने रब की मग़फ़रत और जन्नत की तरफ सबकत करो। वो खैर के कामों में सबकत करते थे, जो सबकत करने वाले हैं वही आगे हैं। खैर के कामों में ढील ना करो, नेकी और पूछ पूछ फजाइल की तलब में टाल मटोल ना करो। जैसे कि शायर ने कहा, आदमी के दिल की धड़कने इससे कहती हैं कि जिंदगी चंद सानियों और सेकंडों की है। इसी चीज में सबकत करने वालों को मुकाबला करना चाहिए। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो को जब खंजर मारा गया और इनका खून खूब बहने लगा, इस हाल में उन्होंने एक नौजवान को देखा जिसका आजार जमीन पर घिसट रहा था। आपने इसे फरमाया, भतीजे अपना आजार ऊपर उठाओ, इससे तकवा भी हासिल होगा और कपड़ा भी साफ रहेगा। सकराते मौत में भी अमर बिल मारूफ की ये शान थी, तुम में से जिसे भी चाहे वो आगे कर दे या पीछे। खुशबख्ती लंबी नींद या आराम पसंदी से हासिल नहीं होगी, बुलंदियों को छोड़ने और फजाइल को फेंक देने से हासिल ना होगी। लेकिन अल्लाह ने इनके उठने को नापसंद किया, चुनाचे इनकी हिम्मत तोड़ दी और इनसे कह दिया गया कि बैठने वालों के साथ बैठ जाओ। सुस्त हिम्मत और थुड़ दिलों की मंतक इनको ये पट्टी पढ़ाती है कि गर्मी में जिहाद के लिए ना निकलो। अगर वो शहीद होते, हमारे साथ रहते, तो ना मरते ना कत्ल किए जाते। खैर के काम में ताखीर से बंदे को वही के जरिए रोका गया। क्या कहा? मान लकुम, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, तुम जमीन से चिमट कर बैठ जाते हो। तुम में यकीनन वो भी हैं जो जरूर देर करेंगे, लेकिन वो जमीन की तरफ माइल हो गया। क्या मैं इस कव्वे जैसा होने से भी रहा? इसलिए उन्होंने आखिरत पर दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी। तुम आपस में तनाजा न करो कि नाकाम होकर रह जाओगे। जब वो नमाज की तरफ खड़े होते हैं तो सुस्त खड़े होते हैं। ए अल्लाह, मैं सुस्ती से तेरी पनाह लेता हूँ। होशियार है वो जो नफ्स को काबू में रखे, मौत के बाद के लिए काम करे। आजिज वो है जो बेलगाम नफसानी ख्वाहिशात के पीछे दौड़े और अल्लाह ताला से बस तमन्नाएं बांधे, यानी बस बैठे बैठे इनको जन्नत मिल जाए। तो क्या सीखा हमने कि कमाना पड़ता, दुनिया में कुछ काम करने पड़ते हैं जिसके बाद कामयाबियां मिलती हैं। खुशहाल जिंदगी किन की? नंबर एक, ईमान और अल्लाह के कुर्ब को पाने वालों की, उम्दा अखलाक और किरदार वालों की, नेक कामों में सबकत लाने वालों की, तकवा और अल्लाह पर तवक्कुल वालों की, हलाल के हसूल की कोशिश करने वालों की, और नफा बख्श चीज़ की ख्वाहिश रखने की। फिर असहाबे सुफा एक ऐसा गिरोह था जो सिर्फ इबादत इलाही और इल्म के लिए, तालीम और तरबियत के लिए अल्लाह के नबी के पास बैठा रहता। उनकी ज़िंदगी का हासिल ही ये था कि हम तरबियत और तालीम साथ साथ पालें। ये लोग अमूमी तौर पर महाजरीन मक्का थे और फ़क्र और गिना की ज़िंदगी बसर करते थे। अबू दर गफ़ारी का हमने पीछे भी सुना, कबीला बनु गफ़ार से थे। इनका कबूल इस्लाम का वाक़ बड़ा दिलचस्प है। आप हजरत साहबा के दरख्शां पहलू में इनकी कहानी सुनिए तो मुझे यकीन है कि आप उससे फ़ायदा लेंगे। बनु गफ़ार से थे, जब अल्लाह के नबी की बेसत की खबर सुनी तो मक्के आकर इस्लाम कबूल किया। अजीमुल मर्तबत मुहद्दसीन में शुमार होते थे। आपसे बेशुमार अहादीस मरवी हैं। बड़े कनात पसंद और सादा मिजाज आदमी थे। और मुगीरा बिन शोबा बनु सकीफ के चश्मो चराग थे। 5 हिजरी में ताइफ से मदीना आकर मुशर्रफ बाई इस्लाम हुए और इसके बाद यहीं के हो रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत को शुआर बना लिया। वह हुसूल इल्म और इक्तसाब फैज़ के लिए दिन का अक्सर हिस्सा अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर रहते थे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईमान के लिहाज से मोमिनों में से मुकम्मल वो हैं जो इनमें से अखलाक के लिहाज से बहुत बेहतर हों, जो अपने कंधे बिछा कर रखते हों और जो मोहब्बत करते हों और इनसे मोहब्बत की जाती हो। और ऐसे शख्स में तो कोई खैर ही नहीं जो ना खुद मोहब्बत करता हो और ना इससे मोहब्बत की जाती हो। सिलसिला सहीहा की रिवायत है 2391। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब गमों को, परेशानियों को, डिप्रेशंस को ख़त्म करके हमें हकीकी गम, हकीकी खौफ लगा दे। और वो क्या है कि हमारा अंजाम क्या होगा, हमारी आखिरत कैसी होगी। अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।